نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة نساء آیت نمبر 40 تک ہو چکے, آج ہم 41 سے شروع کریں گے اور بہت ہی زبردست آیتیں ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت ہے, لیکن آیت نمبر 41 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے دیکھا جائے تو قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جس کو سن کر آپ روئے تھے. تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپ دیکھیے کہ شہادت علی الناس سورۃ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا, اور کیسے دوسرے پارے کے شروع میں کہہ دیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا تاکہ لوگوں پر گواہی دے دیں. یہ گواہی دینا یہ اصل میں ذمہ داری ہے. اگر آج کے دور میں کوئی مسلمانوں سے پوچھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی ہے, تو میرا خیال ہے مرد کہیں گے کہ روٹی کمانے کی, اور عورتیں کہیں گی روٹی پکانے کی. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ایک الگ چیز ہے, اس کو ذمہ داری سمجھتی بھی نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, حکم سے, لوگ کچھ کو تبلیغی جماعت کہہ کے, کسی کو دعویٰ گروپ کہہ کر, کسی کو کچھ کہہ کر, سوچتے ہیں کہ چلیں جی کچھ لوگ ہیں نا جو یہ ایکسٹریم پہ جا کے ایسے کام کر رہے ہیں, تب ہمارے کسی کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. حالانکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, اور آپ کا کیا حال ہوا کہ آپ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ شدت اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آیت 143 میں جو بات آئی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, وہ یہاں آیت 41 میں آ رہی ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ, میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا تھا, اب یہ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں, یعنی میں ان کی ذمہ داری نہیں لیتا. اور یاد رکھیے یہی بات قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہم نے بھی کہنی ہے. ہم سب کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ, ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچایا تھا. یعنی یہ میں کہوں گی, یہ آپ کہیں گے, اور نہیں کی ہوگی تو وہاں پکڑ لگ جائے گی. وہ لوگ جو نبی کی سفارش کے امیدوار ہوں گے اس وقت, وہ وہاں بعض دفعہ شکایتی انداز ہونے لگے گا. سورۃ زمر میں تو بہت شدت کے ساتھ یہ آیتیں آئیں گے, اب انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے. لیکن کہنے کا مطلب کہ ہم سب نے اپنے دور کے لوگوں پر, یعنی 2017 لکھیں ڈیٹ, آج کے دور کے مسلمانوں پر یہ گواہی ہم مسلمانوں نے دینی ہے قیامت کے دن. اس کے بعد پھر ہم خود کریں گے, اور ایسا نہ ہو کہ الٹا ہمارے اوپر مقدمہ ہو جائے کہ اللہ, ان بدبختوں نے تو خود دین کو ہی بدل دیا تھا, دین کے خزانے کو انہوں نے اپنی میراث سمجھا اور اس کو دوسروں سے شیئر ہی نہیں کیا. تو یہ تو شہادت کا ایک رخ ہے نا, لیکن جس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہو اس کو تو اس کو محسوس کرنا چاہیے نا. تو آئیے ذرا آیت شروع کرتے ہیں, پھر اس میں کافی چیزیں انشاءاللہ ہیں جو ہم دیکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فکیفا, پس کیسا ہوگا. انداز کو محسوس کیجئے, فا کیفا, کیفا کیسے, کیوں کر, کس طرح کے معنوں میں آتا ہے. سورۃ بقرہ 28 میں ہم پڑھ چکے ہیں کیف تکفرون باللہ, کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو. جیسے سورۃ فیل میں ہم پڑھیں گے کیف فعل ربک, کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے. تو کیفا دیکھنے میں سوال لگ رہا ہے نا, لیکن اصل میں اس دن کی شدت اور اس دن کی وحشت سے آگاہ کرایا جا رہا ہے. اذا جینا, جب ہم لائیں گے, ایزاد جب کے معنوں میں ہوتا ہے, جب بھی یہ کام ہوگا, جب بھی یہ معاملہ ہوگا. اور ایزا کے عربی میں بہت مختلف معنی ہے. مثلا جو ایک یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے معنی اچانک, یعنی ایزا اچانک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کوئی اچانک معاملہ ہو جائے. جیسے ہم عربی میں کہیں خرج تو فیضل اسد بالباب, جب میں باہر نکلا تو دروازے پہ شیر کھڑا تھا, اچانک دیکھا تو وہاں ایک شیر تھا, تو وہ اچانک تھا نا. یہی لفظ حضرت موسیٰ کہ اسا کے سام بننے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, فائزہ ہی یا حیتن تسا, کہ اچانک وہ اسا سانپ بن کے دوڑنے لگا. اسی طرح ایک کبھی, کبھی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, یہ بھی لکھیے کبھی, وین ایور. ایزا کے معنی جب کسی کے نتیجے, جب کسی بات کے نتیجے میں کچھ واقع ہو. مثلا وین تو سب ہم سیا تم بیما قدمت ایزا ہم یقنتون, अल्लाह कहते हैं जब इनको इनके बुरे करतूतों की वजह से कोई तकलीफ आती है तो मायूस हो जाते हैं। तीसरा मानी इज़ा का होता है शर्त, कभी ये शर्त के मफहूम में होता है, जमाने के साथ माजी मुस्तकबिल हाल के लिए आता है। मसलन सबको आती है वो आयत इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत, कहाँ है इस आयत? सूरत नसर में। वहां इज़ा किसके लिए आ रहा है? शर्त, जब आ गई अल्लाह की मदद तो फिर तुम देखते हो कि लोग अल्लाह के दीन में जा रहे हैं। या पीछे अभी हमने सूरत आल इमरान में पढ़ा है, फ़ाइज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह, जब आप पुख्ता इरादा कर लें किसी काम का फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें, फिर ना इधर देखें ना उधर देखें, यानी अपने फैसलों पे स्टेबल हो जाएं। फिर इसी तरह सूरत मोमिनून में भी ये आएगा। तो यहाँ फिर आप देखिए कि यहाँ लफ्ज़ क्या है, फ़कैफ़ इज़ा जीना। उन लोगों के लिए तो ये मामला अचानक होगा जिन्होंने दुनिया में जिम्मेदारी को समझा ही नहीं, तो उनके लिए तो इज़ा का मानी अचानक के लफ्ज़ों में आ रहा है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इज़ा से मुराद वही जो इज़ा जा नसरुल्लाह, मुस्तकबिल में ये होगा, यानी ये बात हो के रहेगी, इन लोगों को लग बता जाएगा उस दिन क्या होगा। इज़ा जीना, हम लाएंगे मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से भी शहीदिम, एक शहीद, एक गवाह। आप देखिए कि शहीद का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में भी आता है, उर्दू में भी आता है, शहीदा यशहुदु, हाजिर होना, मौजूद होना। जो किसी को मालूम हो इसकी बिना पर ठीक ठीक तौर पर बयान करना, हम कहते हैं ना गवाही दी, शहादत दी, वही लफ्ज़ है ये। तो यहाँ शहीद का मानी वो नहीं है जो उर्दू में हम गैब के मानों में करते हैं, जैसे शहादत का मानी गैब के मानों में भी आते हैं ना, आलिमुल गैबी व शहादा अल्लाह का नाम है। अब यहाँ ये जो लफ्ज़ आ गया है ना, इसको जहन में रखिएगा कि ये लफ्ज़ जो है ये एक इंसान को अपने आँखों से देखी हुई चीज़ नहीं, यानी शहीद यहाँ मौजूद के मानों में नहीं, बल्कि फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बी शहीदिन, गवाह के मानों में आ रहा है। बस हमने नबी सल्लम का दौर नहीं देखा, हज़रत नूह का दौर नहीं देखा, तो हमारी ये गवाही किस बुनियाद पे होगी? बोलिए, इल्म की बुनियाद पे होगी। हम में से बहुत सारों ने नियाग्रा फॉल नहीं देखी, बट हम गवाही दे सकते हैं कि वो टोरंटो के पास नियाग्रा नाम के एक शहर में मौजूद है। तो क्या आपने देखी? नहीं देखी, तो फिर आप गवाही कैसे देती हैं? क्योंकि आपको उसका इल्म है, आपने उसकी तस्वीरें देखी हैं, आप उसके बारे में जानती हैं ये सब कुछ। तो लिहाजा यहाँ ये बात समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर एक से पूछेगा, व जी ना भी काला हाउला शहीदा, ज़रा इसको महसूस करिएगा, और ए नबी आपको लाएंगे हम इन सब पर गवाह बनाकर। यानी हर नबी को बुलाना है और हर नबी से गवाही लेनी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बुलाकर सारे नबियों की सच्चाई की गवाही लेनी है। अभी आपको मैं हदीस सुनाती हूँ तो आप इंशाल्लाह देखेंगे तो वाकई आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत थी वो महसूस होगी कि आप कैसे इस मौके पे परेशान हो गए थे कि पहले हम हर उम्मत के अंदर से गवाह लाएंगे और वो उस उम्मत का नबी होगा, नबी के बाद उस दौर का मुबल्लिग होगा, और सब के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह लाएंगे, जिसको आज के दौर में आप क्या कहते हैं, इस्तगासे का गवाह। कोई इस्तगासा दायर करता है ना, दावा दायर किया, तो कहते हैं गवाह लेकर आओ। अल्लाह ताला की अदालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इस्तगासे के गवाह की हैसियत से पेश होंगे और कहेंगे कि अल्लाह तेरा जो पैगाम मुझ तक पहुँचा था मैंने इनको पहुँचा दिया है, आप ये खुद जिम्मेदार और जवाब दें। चुनाचे अपनी ही कौम के खिलाफ गवाही आई ना नबी की, यहाँ नोट कीजिए अला हाउला, अला क्या होता है? अगेंस्ट, ऑपोजिट, खिलाफ के मानों में, और अला हमेशा मुखालफत के लिए आता है। यानी आज हम तो हाथ पर हाथ धर के शिफात की उम्मीद रख रहे हैं और वहाँ हमारे खिलाफ मुकदमा दायर हो रहा है और अल्लाह के रसूल अल्लाह के सामने अब हमारे खिलाफ गवाही देंगे कि अल्लाह मैंने तो तेरा दीन इनके सपोर्ट किया था, अब इसको दुनिया में फैलाते लोगों को बताते, उल्टा इन्होंने खुद ही दीन छोड़ दिया। सूरत फुरकान आए 30 किसी को याद है? अल्लाह के नबी क्या कहेंगे? वकाल रसूल, और कहेंगे रसूल, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये है मेरी वो कौम जिसने कुरान को पकड़ कर भी छोड़ दिया था। यानी इत्तखज़ू पकड़ने के लिए आता है और हजूरा महजूरा कहते हैं छोड़ने को, यानी जाहिर तो पकड़ा हुआ था दो दो हाथों में पकड़े हुए थे, गिर जाए तो उसके वजन काटा भी देते थे, लेकिन अमली तौर पे छोड़ा हुआ था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे मुझे कहा कि ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। कहा अल्लाह के नबी मैं सुनाऊं, कुरान तो आपके ऊपर खुद नाजिल होता है। उस पर आपने फरमाया हाँ मुझे किसी दूसरे से सुनना अच्छा लगता है। तो अब्दुल्ला ने सूरत निसा शुरू कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे और बाकी सहाबा भी हो सकते हैं वहां हो। इब्ने मसूद कहते हैं कि मैं गर्दन झुकाए पढ़ता जा रहा था, लेकिन जब इस आयत पर पहुंचा फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जी ना बिकला हाउलाई शहीदा, तो नबी सल्लम ने कहा हसबुका हसबुका, बस तुझे इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है। कहते हैं कि उसके बाद मैंने सर उठाकर देखा तो आपकी आंखों से आंसू रवां थे, आप रो रहे थे, यानी पढ़ने की रवानी में इन्होंने पहले नहीं महसूस किया। क्या पता चला? जिम्मेदारी का एहसास। ये बुखारी की रिवायत है, याद रखिए। अल्लाह ताला ने इसमें नबी सल्लम को चूंकि ये महसूस करवाया कि ये काम है आपके करने का, तो खौफ खा रहे हैं। और खुतबा हजरत अलविदा तो आप सबको याद होगा, इसी बात का तो उस दिन आप इकरार करवा रहे थे, क्या हल बल्लग़्तु, क्या मैंने पहुंचा दिया, तो पहुंचा दिया। तो याद रखिए ये बहुत सख्त वक्त होगा। दुनिया में आपको कोई कहे ना चलिए कोर्ट में गवाही देनी है, टांगे कांपती हैं, अपने नहीं देते, हक वाले नहीं साथ चलते, कहते नहीं हमारा नाम ना डालना। आप देखिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना, 100 लोग आपके सपोर्टर होंगे, आप कहते हैं हमें 10 लोगों के नाम चाहिए जिनका नाम जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो 10 लोगों में से 100 में से 2 रह जाएंगे पीछे, नहीं हमारा ये मसला, हम कागजों में नहीं आना चाहते, हमें ये ना हो जाए, हमें इनकम टैक्स ना पड़ जाए, हमारे नाम कहीं और ना चले जाए। वहां क्या हाल होगा जिस दिन ये हालात होंगे? और मैं कहती हूँ कि सिर्फ इस बात पर अगर हम सच्चे हो जाए ना, मैं अपने आप के ऊपर लेके ये बात कहूंगी, मैं अल्लाह को भी यही कहती हूँ कि अल्लाह सिर्फ इस बात पर हमारे दिल को सच्चा कर दे कि अल्लाह हम इस काम को इबादत समझ के, ऑनर समझ के करना चाहते हैं और कर रहे हैं, कि अल्लाह तेरे बंदों को तुझसे जोड़े, गैर मुस्लिमों को इस्लाम से जोड़े और मुसलमानों को कुरान से जोड़े। यही दावत है आज के दौर में मेरी भी, कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम से जोड़ो और मुसलमानों को कुरान से जोड़ो। सीधी सी बात है, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो तब्दीली आती है, और मुस्लिम जब कुरान कबूल करता है तो तब्दीली आती है। आपके दिल की हालत मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है, पहली दफ़ा जब कुरान उनकी ज़िंदगी में आता है क्या हालात होते हैं। मुझे कहीं की एक स्टूडेंट थी तो उनके मैसेज ज़रा सी लेट नाइट मिले, इतफाकत मैं उठी तो मैंने कहा कुछ काम कर लूँ, तो मैंने मैसेज देखे तो उनके मैसेज थे ना, तो उनकी बेचैनियाँ थी उसमें, सॉरी भी लिख रही थी कि मैं इस वक्त कर रही हूँ, पता नहीं आपके पास क्या टाइम है, लेकिन कह रही मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मैं रो रो के बैठी हूँ, मुझे अल्लाह ने कितना बड़ा तोहफा दे दिया है, अल्लाह ने मुझे इस कुरान से जोड़ा। तो मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने दिल में सोचा पहली मोहब्बत ऐसी होती है, 15, 16, 18 साल की उम्र में जब पहली दफ़ा मोहब्बत होती है ना लड़की लड़के को, या लड़के लड़के को, या शादी के बाद के दिन वैसे ही होते हैं, ये मोहब्बत रातों को जगाती है। ये कैसे हो सकता है कि आपको अल्लाह से प्यार हो? यानी मुझे ऐसे लगता था दुनिया में मैं वाहद खातून हूँ वो जो मैं उसका मसला समझ रही हूँ इस वक्त। ये बात वो किसी और को लिखेगी, कोई क्रेजी कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, कोई उसको बेवकूफ़ कह देगा या क्या हो गया, लेकिन मुझे पता ऐसे ही होता है। पहला कुरान और अल्लाह से पहली मोहब्बत, वो शुरू की मोहब्बत, आप उसको मिस करें, महसूस करें वो क्या वक्त था। यही कुरान होता है। मुझे किसी की बात याद आ रही है कि कुरान की तफसीर की क्लास में मेरी आंखों में इतना पानी आया होता है कि मैं आयतें पढ़ नहीं सकती आगे से। और अगर हमारे अब दिल ऐसे नहीं रहे तो हमें रोना चाहिए, पत्थर हो गए हमारे दिलों का हाल कि हम इतने टुन हो गए। हम पहले ही कहते हैं हमें पता है आगे ये आयत आएगी, ये बात होगी, देखना अब ये हदीस कोट करेंगे, क्योंकि हम 5-6 दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो जो पहली मोहब्बत है ना, वो बड़ी प्यारी मोहब्बत होती है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तो ये कितनी खुशकिस्मती है, इस वक्त सारे फितनों से निकाल के अल्लाह ने आपको मुझे इस क्लासरूम में बिठा दिया। हम इधर कोई तस्बीह नमाज नहीं पढ़ रहे, हम इस वक्त यहाँ कोई बैठ के 500 दानों की तस्बीह पे कुछ इस्तग़फ़ार नहीं कर रहे, लेकिन हम इस कुरान को आम करने की कोशिश तो करें। और वल्लाही ये नबियों का काम था, ये अम्बिया का काम था, दावत हक के लिए कुर्बानियाँ देना और हिजरतें करना, ये है नबियों का मिशन। ना तो नबियों की आपने नमाजों का तस्करे पढ़े, सच बताएं जो पहले पढ़ चुके हैं वो गवाही उनकी लेती हूँ, आपने 2-3 दफ़ा तो कुरान पढ़ ही लिया हुआ है, कहीं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तस्बीहों का जिक्र मिला, वजीफ़ों का जिक्र मिला, आपको उनके किसी बहुत लंबे चौड़े मजलिस में बैठकर लोगों के साथ कोई फिकी बातें करने का मौका मिला। पूरा कुरान पढ़ लिया ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो मेरी किताब है, तो आपको भी तो लगती होगी ना। क्या पढ़ा है हमने नबियों का जिंदगी में, उसी से आज उम्मत काफिर है। मैं कहती हूँ रोना आता है मुझे, दूसरे जो बेचारे अभी दुनिया कमा के भाग रहे हैं उन पे नहीं रोना आ रहा, मुझे रोना उन पे आता है जो दीन के पीछे भाग रहे हैं और उनका फोकल पॉइंट ठीक नहीं है। हम अपने मखारज ठीक करने पे रोते हैं, हम ग्रामर ठीक करने पे रोते हैं, फिकह हनफी फिकह शाफी फिकह मालकी के फर्क पे बात करते हैं, हम लोगों को लंबी चौड़ी बातें दीन के नाम पे सिखा रहे हैं। 8-8, 10-10 साल के कोर्स हैं आलिमात के और उलमा के, लेकिन ये तड़प नहीं मिलती जो कुरान पढ़ के मिलती है। तो बहरहाल मैंने उनकी बातों को पढ़ा सुना, फिर मैंने सोचा कि अल्लाह मुझे इनसे कितनी उम्मीदें क्यों लग रही हैं। जिससे अल्लाह ने खैर लेनी होती है उसका दिल हरा कर देता है। फिर वो जो कुरान पढ़ता है ना, उस कुरान की तो मैं कहती हूँ बहार ही कोई और है। मैं यकीन करो मैं अब इमोशनल हो रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे अपना शेयर करूँ। जब मैं पहली दफ़ा इस क्लास में बैठी, यहाँ तो नहीं बैठी ऑफकोर्स, मैं तो दुनिया के किसी और हिस्से में थी, जब पहला कुरान मेरे दिल पे पड़ा था ना, मैं कहती हूँ ये उस वक्त की मेरी दुआएं कबूल हुई हैं जो ये अल्लाह मुझे छोटे छोटे मौके देता है। अल्लाह की कसम, मैं अक्सर अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह तूने मेरे में क्या देखा, अल्लाह मेरे में तो कोई खूबी भी कोई नहीं है, मुझे तो बात भी नहीं करनी आती, मेरे अंदर तो कोई है ही नहीं खूबी, इतनी खूबियाँ वाले लोग दुनिया में पड़े हैं। फिर मैं कहती हूँ मेरी वो दुआएं, मेरी वो आहें, वो तड़प जो है ना, वो मुझे लगता है अल्लाह तूने कबूल की। या कभी किसी बुजुर्ग की कोई एक दो दुआएं याद है अपनी फैमिली में, कभी उनका कोई काम किया होगा तो उन्होंने कोई दुआ दे दी, अल्लाह तुम्हें अरशों के भाग लगाए, अल्लाह तुमसे ये करे ये कराए, पता ही नहीं था क्या होता है। यानी ये सफ़र दुआएं लेने से मिलता है, और यकीन करें उस्तादों की दुआएं आज तक अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से मुझे अपने उस्तादों से दुआएं मिलती हैं, अल्लाह की कसम। और मेरे लिए वो इतना बड़ा खजाना है, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपने किसी उस्ताद का जान के दिल नहीं तोड़ा, और मैंने कभी उनकी नाकदरी नहीं की। मुझे उनकी हर लम्हे ज़रूरत होती है, मैं उनसे महीनों बात ना करूं, लेकिन मेरा उनके साथ दिली कलबी मेरा रूहानी ताल्लुक होता है। मैं खुद कई दफ़ा अपने कई उस्तादों से जब भी मुलाकात हो तो मैं कहती हूँ, वैसे तो अब हम साल बाद मिल रहे हैं, मैं ख्वाब में हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होती है, और अल्लाह जानता है मैं जितना अपने उस्तादों को ख्वाब में देखती हूँ मैं इतना अपने माँ बाप को भी नहीं देखती। क्यों? एक रूहानी ताल्लुक है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा आपको हिदायत की तरफ रास्ता दिखाए और आपको उसकी कदर ना आए? ये कैसे हो सकता है? आपने तो एक बच्चे को 9 महीने पेट में रख के पैदा किया, तो आपको उससे इतनी लंबी चौड़ी उम्मीदें हैं, तो जो हिदायत की तरफ आपको ले जाए मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ? तो ये वो चीज़ें हैं जो नबियों को ये काम करवाने पे माइल करती थी। और अल्लाह की कसम जिसको ये बात समझ आ गई ना, ये क्यामत का मंजर आज आंखों में रहा, ना एहसान है, ना रोब है, ना धमकी है कि मैंने नहीं करना, मैं जा रही हूँ, मुझे अपना पूछना, मैं आपको ये कह दी हूँ, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, ये मेरा आखिरी दिन है, ये पहला दिन। फिर तो हर वक्त आपका हाल उस एम्प्लॉई की तरह होता है जिसको डर ये कि मेरी जॉब ना छिन जाए, मालिक नाराज़ हो गया मुझे जॉब से निकालेगा, अगली जॉब मिलने में महीनों लग जाने, और वो देने वाला जॉब कौन है आपको? वो मालिक कायनात है जिसके लिए ये काम होता है। अल्लाह की कसम, कोई बोल अपनी ज़ाती ज़िंदगी का, कोई अमल, कोई ज़ाती ज़िंदगी का गुना करके बंदा खौफजदा हो जाता है, अल्लाह इसकी पादाश में अपना ये काम ना छेड़ना। क्योंकि जैसे सहाबा किराम का हम पढ़ते हैं ना, तहज्जुद उनकी एक दिन चली गई, गालिबन इब्ने मसूद या किसका कॉल पड़ा था कहीं, कोई भी थे, नाम ना लिखे, तो कहने लगे मुझे याद है मेरा कौन सा गुना है जिसकी वजह से मेरी आज की तहज्जुद छुटी है। और ये मैंने अभी ये जो मुसीबतें क्यों आती है बुक पढ़ाई है ना पेरिस में, उसके अंदर ये वाक्य आया था। यानी उनका कोई नेकी का अमल छूटता था ना, हमारा छूटे, हम क्या कहते फलावरा वो फुरा, उसके लिए नहीं छोड़ी, उसके लिए घर वालों की मजबूरियों से छोड़ी है, फुलां के साथ नहीं बनी, हम अपनी लॉजिक्स ले रहे होते हैं, वो वजह मेरा। और वो क्या कहते थे, जिसने सुना सेशन याद है एक लफ्ज हजरत आयशा का, बिजम्बी, ये मेरा ही गुना, सर में दर्द है, अम्मा जी क्या हाल है, ये आयशा थी असमा थी, पता नहीं कि मुझे गलती लग जाती है, दोनों बहन ही थी। किसी ने कहा अम्मा क्या हाल है, सर में दर्द है, क्या हुआ, क्या वजह हुई, कहती बिजम्बी मेरा गुना है। अल्लाह की कसम ये अंदर की आंख खोल के चले तो आपको कोई दुनिया में बुरा नहीं लगता, आपको लगता है ये मेरे गुनाह मुझे इस नेकी से रोक रहे हैं, मेरे से ये काम छूट गया, ये काम अल्लाह ने मुझे तौफीक ही नहीं दी आने की, कितने प्यार से मैंने आना शुरू किया था, आज ये मेरी जान को रोग लग गया, कल वो लग जाना है, परसों ये लग जाना है। मैं कितनी बदबख्त हूं कि मेरे नसीब में कोई नहीं। और हर वक्त या मौसम के शिकवे, या बच्चों के गिले, या शोहरों की सख्तियां, या ससुराल वालों के गुनाह की माफियां। दैट्स इट, मैं पाक साफ नाती धोती, मुझे ना क़यामत के दिन कुछ कहना। और आप देखिए नबी सल्लल्लाहु ने कितनी तकलीफ़ें सही, दान टूटा, पैदल जाके ताइफ तक पैगाम दिया, जूतियाँ चिपकी, 3 दिन गारे सौर में रहे। अगर हज़रत अबू बकर की वो नेकियाँ 3 रातों की इतनी भरी हैं कि आसमान के सितारे काम है उसके लिए, तो नबी की भी तो वो नेकियाँ थी कि नहीं? अबू बकर तो हेल्पर थे, असल काम तो नबी थे। इसके बावजूद आप रो रहे हैं कि अल्लाह मैंने हक नहीं अदा किया। मैं यार आप कितने सुकून से बैठे हुए, कैसे हमें चैन पड़ता है इन बातों पे कि कर लिए बहुत। हमारी एक स्टूडेंट है, तो उनके मियाँ को कहीं जॉब मिली, तो उनको किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ा टेम्परेरी। मुझसे भी पूछने लगी ये है वो है, किस्सा मुख्तसर, वहाँ नॉन मुस्लिम्स के साथ इंटरेक्शन था। मैंने कहा जो करना है दावा की नीयत से करें, दावा करना है तो जाओ। हम मुसलमानों के लिए किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की नीयत दावा है, वो करनी है तो फिर अल्लाह बाकी काम भी करा देगा। घंटे का फोन करके ना, तो मेरा ख्याल है रात को मैं सुन रही थी, उनके मियाँ भी थे वो थे, तो सर से वो टिप्स ले रहे थे कि हम यहाँ जिस मुल्क में इनके कल्चर के मुताबिक किस किस तरीके से दावा दें, क्योंकि हमारे लिए नए लोग हैं। बात समझिए, जिंदगी का खुलासा ये, रोटियां पका के, रोटियां खा के, कपड़े धो के, कपड़े इस्त्री करके दुनिया से चले गए, किसने पूछना? कल इस्त्री करके पहने थे कि नहीं, किसने पूछना है? रात को क्या खा के सोए थे? सुबह उठे तो फिर भूख लगी हुई थी, पर इस वक्त कितनी भूख है उम्मत की। और आप देखिए मासूम बच्चों को हम एक ऐसे माहौल में डाल देते हैं, कल का सबक याद कर ले, रब्बर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा तो नहीं सिखाते ना वो लोग। और आज हमारे बच्चे पार्शल, मैं कहती टुकड़ियों में बटा हुआ दीन ले रहे हैं, और वो भी पूरा नहीं मिलता। रोता धोता दीन है आज हमारे पास। तो बड़ी सोच उजागर करने लिए आया था कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का नबी इनायतों पे रोए और हम बगैर रोए आगे गुजर जाए। हम भी तो उसी की उम्मत है, हमें रोना नहीं आता, हमारी आंखें तो गीली होनी चाहिए, क्योंकि अगली आयत पढ़ें तो शायद फिर हमें भी कुछ एहसास हो जाए कि यौमइज़ी यवद्दुल्लज़ीन कफरू, उस दिन तमन्ना करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया। एक अमल कुफर, और दूसरा असबुर रसूल, और रसूल की नाफरमानी की, इन दोनों की अलग ज़रूरत थी। काफिर तो वो हैं जिन्होंने रसूल को माना ही नहीं, निकाल दिया मक्का से, जाओ हम नहीं मानते, तुम हमारे ख़ानदान के रस्म व रिवाज पे तनकीद करते हो, चले जाओ। लेकिन ये असबुर रसूल कौन है? ये मान के ना मानने वाले हैं जी, दोनों की बात है। और काफ़रु नशुक्री भी है, और कुफर भी, और इनकार भी है। आज लगता है उम्मत इस दर्द से बिल्कुल खाली। मेरे जहन में बर्फ़ की सिल आ जाती है जब मैं इस मौजू पे उम्मत की नब्स पे हाथ रखूँ। तो पता नहीं मैं शायद ज्यादा ही जज्बाती हूँ। नमाजें पढ़ने वाले बड़े, रोजे रखने वाले बड़े, वजीफे करने वाले बड़े, हज करने वाले बहुत, उम्रे करने वाले बहुत, डोनेशन देने वाले बहुत, सोशल वर्क करने वाले आज बहुत हैं, बट ये दर्द बहुत कम है कि ये गवाही देनी है कल जाके। और जो करने लग जाए उसको कहते हैं फालतू बंदा, और क्या करना है जी, इन्होंने यही तो करेंगे। ख्वाहिश क्या होगी ना शुक्रे और काफिर और नाफरमान लोगों की, लो तो सवा भी ही मुलार्दू, काश इनके समेत बराबर कर दी जाए इनके जमीन। लफ्जों पे जरा सा गौर करके देखें, उर्दू में हम कहते हैं काश जमीन फटे और मैं उसमें धंस जाऊं, वही जुमला कब कहता है बंदा? जब शर्मिंदगी होती है, जब किसी को फेस नहीं करना चाहते, जब बेइज्जती होती है, जब इंसान का बस नहीं चलता कि आज तो बस जमीन फटे और हम उसके अंदर, लव तो सवा बीहिम, बीहिम बड़ा अहम लफ्ज है, यानी हमारे बराबर कर दी जाए जमीन, यानी ये जो हम जमीन के ऊपर खड़े हैं ना, हम इसके अंदर चले जाएं और ऊपर से लेवल कर दिया जाए, नसीह मनसिया हो जाएं। और वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे, कुछ नहीं, कोई फख्र नहीं उस दिन, कोई बड़ाई नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह ताला आज क़यामत का मंजर आंखों में ला रहे हैं, और यकीन करें कुरान पढ़कर मोमिन के आंखों के आगे वो मंजर आ जाते हैं जो काफिर के सामने क़यामत के दिन आने वाले हैं। आपको इस वक्त नहीं एक अदालत लगी हुई दिख रही, और अल्लाह के नबी और नूह हैं और आदम हैं और मूसा हैं और ईसा हैं, और सब की गवाही, और सब के दिल कांप रहे हैं। अभी इसी रबी अव्वल में एक लेक्चर दिया था, आखिरी लेक्चर था पेरिस ट्रिप का, उसमें भी यही हदीस सुनाई थी कि उस दिन नबी कांप रहे होंगे। سفارش نہیں کر پا رہے کہ صرف اس بات کی کہ حساب شروع ہو. اللہ اکبر. تو آج کرنا ہے جو کرنا ہے, جو کر لو آج کر لو, کل کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو لفظ ہے نا جی نا بی کا, اللہ ہاؤلائی, جی نا بی کا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ ہاؤلائی کون ہے؟ آپ کی امت. اور شہیدن کون ہے؟ گواہ جو ایمان لایا اس کے ایمان پر, اور جس نے کفر کیا اس کے کفر پر, اور جو نفاق میں مبتلا ہوا اس کے نفاق پر. ایسے لگتا ہے نا ابھی سے سوچ کے پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا, کوئی بولے تو کیا بولے. سب سے بڑا فیصلہ ہوگا یہ قیامت کے دن. ہم تو کہتے ہیں نا قیامت کے دن یہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ اور شرا یرہ, وہ تو ہے, بٹ قیامت کے پرچوں میں سب سے مشکل سوال یہ ہوگا. لکھ لیں یہ بات, ہاتھ پہ پڑ جانے امت مسلمہ کو. سب سے زیادہ وقت امت مسلمہ پہ لگنا ہے, یاد رکھیے, کیونکہ نعمتیں بھی ان کو ملی نا اور ذمہ داری تو ان کی. دیکھیے جو آپ کا امپلائی بنا نہیں, آپ اسے پوچھتے ہیں کیا کیا؟ کوئی پوچھتا جا کے کسی میڈ کو کہ صفائی کیوں نہیں کی, وہ کہتے میں نے کب کہا تھا کروں گی. پوچھتا کس کو ہے آپ بتائیے, جو آپ سے اوکے کرتی ہے آؤں گی کل, پھر آتی ہے, یا آئی تھی تو کر کے کیا گئی. یہ تو ہم نے اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہے نا کہ ہم کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بے لاکھ ہیں, نہ کوئی بولے گا نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا, کوئی اشارہ نہیں کر سکے گا. شرمندگی بھی اس لیے ہوگی کہ شاید آج شرمندگی کی وجہ سے اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے. اپنے ریکارڈ دیکھ دیکھ کے تڑپ رہے ہوں گے کہ اللہ کیا بنا, حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اور بعض لوگوں نے دیکھیے ذرا اس اتنی رقیق القلب آیت کو جھگڑوں کا ذریعہ بنا دیا. یہ آیت ہے قرآن کی جس پہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھا آپ حاضر اور ناظر ہیں نا, تبھی تو شہید ہیں, اور شہید تو حاضر ہوتا ہے, جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا. تو اگر اللہ کے نبی حاضر اور ناظر تھے تو جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں بھی ہوتے, اور جب مدینہ چلے گئے تھے تو کبھی کبھی مکہ کی گلیوں میں بھی نظر آتے. عقیدے کی سری چیزیں ہیں, تین چار جگہ اور بھی ہے قرآن میں. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم, سورہ آل عمران میں بھی لکھائی تھی یہ بات کہ آپ تو اس وقت وہاں تھے ہی نہیں جب مریم کی کفالت کے سلسلے میں وہ کلمے ڈال رہے تھے. تو صرف لفظی باتیں کرنا بہت آسان ہے, قرآن سے تو آپ شرک ثابت کر سکتے ہیں اللہ کی قسم, اگر آپ کی سوچ سیدھی نہ ہو. تو یہاں شہید سے مراد حاضر ناظر نہیں ہے, علم یقینی, علم کی بنیاد کی گواہی ہیں. کیونکہ لوگ کہیں گے نا آپ حضرت نوح کی قوم کی گواہی کیوں دے رہے ہیں, کہ آپ وہاں موجود تھے؟ تو امت مسلمہ کہے گی ہم موجود تو نہیں تھے, بٹ ہم نے نوح اور ان کی قوم کا حال ہم نے قرآن میں پڑھا, ہم نے سنا ہے, ہمیں پتہ ہے ان کا یہ حال تھا, اور یہ سب کچھ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی شہادت کی پوری حقیقت حضرت عیسیٰ کی شہادت سے واضح ہوگی انشاءاللہ. یہ سورت نساء ہے, تو سورت مائدہ کے آخر میں آیتیں ہم پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. آج اس آیتوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں قیامت کے دن کھڑے ہوئے. اور وہ آیتیں ہم پڑھیں گے نا جب مائدہ غالباً 161 ہے یا 170 کچھ اس طرح, دیکھ لیجیے گا. تو وہاں جاتے ہیں تو ہمیں 116 اور 117 آیتیں ہوں گی مجھے لگتا ہے, کہ وہاں جائیں تو حضرت عیسیٰ کھڑے لگتے ہیں کٹہرے میں کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو پوجو. حدیث سن لیجیے آپ کو یہ کانسیپٹ کافی کلیئر ہو جائے گا. ابو سعید خدری کی روایت ہے, قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا, وہ کہیں گے لبیک و صادیک, اے رب میں حاضر ہوں اور اس پہ خوش ہوں. اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ دیکھیے اللہ کو پتا کہ نہیں پتا, پتہ ہے, لیکن جیسے عدالت میں گواہیاں لی جاتی ہیں نا, پرووک کیا جاتا ہے, ابھارا جاتا ہے تاکہ دوسرے بھی سن لے, وہی انداز ادھر بھی ہے. پیغام پہنچایا تھا, لوگ کہیں گے ہمارے ہاں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا. اور سورہ ملک میں کیا پڑھتے ہیں رات کو؟ جہنم کے فرشتے کیا کہیں گے؟ الم یاتکم نذیر, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا بٹ ہم نے سیریس ہی نہیں لیا. یہی سوال وہاں نوح سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نوح سے کہیں گے کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ یعنی آپ کی قوم نے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا. دیکھیے بدبخت قوم ہے, زندگی بھر کی ساری نبیوں کی تپسیا کہہ لیں, اس کی کوششوں قربانیوں کو ہماری ریجیکٹ کر رہی ہیں, آئی کوئی نہیں. یہ نہیں کہا کہ آیا تھا ہم نے نہیں مانا, کہتے آئی کوئی نہیں. اب اللہ کہیں گے نوح کوئی ہے گواہ آپ کے پاس جو آپ کے حق میں گواہی دے؟ وہ کہیں گے ہاں, کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے. یہی مراد ہے اس سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی 4487 نمبر ہے. تو بہرحال آج کوشش کر کے انسان تھوڑی سی محنت کرے، اور میں کہتی ہوں جو اس کا مزہ، یہ اس کو پتہ جو کرتا ہے، تھکن نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، بھوک نہیں لگتی، بس مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ کا لفظ آتا ہے دل میں، انجوائی کرتے ہیں، خوشی خوشی ہے. ایڈورس سے ایڈورس حالات میں بھی آپ کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، یہ آپ اپنے اوپر ایک اللہ کا کرم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹھیک رستے پہ لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، آپ کا دل بہت بڑا چوکیدار ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. آپ یہ سیکھ رہے ہیں نا، آپ روز ہی آتے ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی دن آتے ہیں، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ صحیح سیکھ رہے ہیں کہ غلط؟ آپ کا یہ پہلا قرآن ہے نا، سچ بتائیں. آج آپ ماشاءاللہ پانچویں پارے پہ کھڑی ہیں، دل میں اطمینان ہے؟ یہ تو نہیں لگ رہا کہ غلط آپ کو سکھا رہا ہے. اور شروع میں کتنے لوگوں نے آپ کو شبہ ڈالے؟ ہر ایک کو ڈالتا ہے. شیطان تو اللہ معاف کرے ساری عمر ہی نہیں چھوڑتا، لیکن جو نیا آتا ہے اس کو تو ایسے پٹک پٹک کے مارتا ہے. اندر سے پوچھئے ٹھیک ہے، اگر کلا کہ نہیں یہ جو باتیں بتاتی ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتی، تو چلے جائیں پھر غلط جگہ پہ. آپ اندر کا سکون سب سے بڑا آپ کے لیے منصف ہے، کیا آئی ایم ایٹ مائی رائٹ پلیس. رہ گئی مخالفتیں، باتیں، ریئیکشن، وہ تو ہو گئی، جو نہیں کر رہے وہ آپ کو کیوں کرنے دیں گے، سیدھی سی بات ہے. اور یہ جو بات ہے نا، مٹی میں چھپ جاؤں، تو یہی بات سورت نبا آیت 40 میں ہے. کافر کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. جس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاؤں، فیس نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں، قسم ہے اللہ ہمارے رب کی، ہم شرک کرنے والے نہ تھے. یہ مراد ہے، یعنی سورۃ انعام 23 میں آتا ہے، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. پھر ان کا کوئی عذر نہیں ہوگا، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے. تو بہرحال شعور بیدار کیا جا رہا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ایسی آیتوں کو پڑھنے کے بعد؟ آپ کے دل پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟
میں یہ سوچ رہی تھی ابھی کہ پچھلے دنوں میں میرا بہت دل تھا، یعنی یہاں پر بہت زیادہ پاکستانی ہیں، ہمارے پٹھانوں میں بھی ہیں، کہ میں ان کو بلاؤں، کیونکہ نور القرآن کے متعلق تھوڑا سا ان کو ہے کہ یہ لوگ ذرا اسٹرکٹ سے ہیں، شیڈول بھی. تو میں نے سوچا کہ میں ان کو بلاؤں، ان کو خود اپنی فیلنگ بتاؤں تاکہ یہ لوگ آنا شروع کر دیں. لیکن جب میں نے ایک گھر میں ایک دعوت ارینج کی، تو سب سے پہلے میرے گھر والوں نے میری مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، سب کو پہلے سے پتہ ہے، تم کیوں تم بلاؤ گی تو ان کو مطلب ان کو فورس کرو گی، اور یہ لوگ یہ پسند نہیں کرتے. تو میرے میاں اور نند دونوں نے مخالفت کر کے،
تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد کر لیتی، ان کی بھی تو مخالفت ہوئی تھی نا.
بالکل. میں نے
بحث نہیں کرے، دعا کرے. دیکھیے، کسی کے اوپر زور نہ ڈالیں، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ماسے کرنا کہتے ہیں نا، پھر اس سے اگلا سوچتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا لالچ ہے. دعا کریں اللہ ان کے دل کے دروازے کھول دے، اور اپنی مدد، میں کہتی ہوں ابھی ہم خود کو تو ٹھیک کر لیں. جی بالکل، ایسی ہمارے پاس اتنی مثالیں ہیں. یعنی ان کی بات بہت اچھی ہے کہ کچھ لوگوں میں پیاس تو ہے، آنا بھی چاہتے ہیں، پھر بھی نہیں آتے. آپ شاید 10 کو جانتی ہوں گی نا، میں آپ کو تو میں 100 ایسوں کو جانتی ہوں. یقین کریں جو لوگ نہیں آ پاتے نا اس کلاسز میں، ایک تو درسوں میں آتے ہیں لوگ ادھر ادھر سے، لیکن یہ کہ جو پرمننٹلی، میں کبھی نہیں سوچتی کہ ان کو شوق نہیں ہے، ان کو کرنا نہیں، مجھے پتہ ہے ان کو آنا ہے، صرف رکاوٹوں کو عبور نہیں کر پاتے. اس رستے میں اللہ نے سیفٹی چیکس لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے اگر پاکستان میں اسلام آباد جا کر امریکن ایمبیسی میں جانا ہونا، تو آپ خود سے نہیں جا سکتی، آپ اپنی گاڑی میں بھی نہیں جا سکتی، آپ اپنا سیل فون بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ کی گاڑی بھی لے لیں گے، آپ کو ایک بس میں بٹھا دیں گے. آپ کے بیگ میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک تھیلے میں آپ کے ڈاکیومنٹ ہونے چاہیے، پاسپورٹ، فون بھی لے لیں گے. کوئی کہتا ہے میں نہیں گاڑی چھوڑ سکتا، وہ کہتے جائیں، میں سیل فون کے بغیر نہیں جی سکتی، وہ کہیں گے جائیں. بات سمجھ گئے؟ جس کو ان رکاوٹوں کو قبول کرنا ہے وہ بیٹھے، اور پھر جائے تو ویزا مل گیا تو جانے دیں گے. یہ تو امریکہ کا ویزا ہے نا، یہ کیا بڑی بات ہے؟ آپ بتائیے، جب اللہ کا راستہ آپ لیں گے تو اس میں کتنے بڑے بڑے شیطان ہیں. صحیح حدیث ہے، آپ کو سنائی ہوئی ہے شروع میں، پہلے کورسز میں تو بہت ہی سناتے تھے ہم لوگ، शुरू में कि जब कोई हिदायत के सफर पे चलता है तो शैतान रास्ते में पर्दे लगाकर बैठ जाता है। मेरी पहली साथी उनके लफ्ज़ों के इशारे भी याद आ जाते हैं कि वो कहती थी, ऐसे फील कराती थी कि एक रोड है तो इधर एक पर्दा है, शैतान पीछे खड़ा है, और थोड़ा सा आप चले तो वो पर्दा हटा के कहते हैं इधर आओ, पीछे देखो, मेरे पास क्या कुछ है, इधर इधर बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। जिसने उसके कहने पर उस पर्दे के पीछे झांक लिया वो छोड़ देगा, और जो कहता है नहीं मैं नहीं देखूंगा, खबरदार मैं तो साथ में जा रहा हूँ, तो शैतान मायूस होता है, वो चलता है थोड़ी दूर जाता है तो एक उधर पर्दा लगा के शैतान फिर कहते इधर आओ, खूबसूरत औरतें हैं, किसी को माल दिखाता है, किसी को दुनिया की रौनकें, जो जिस लम्हे में पर्दे के पीछे झांकता है वो पलट जाता है। तो दुआ करें और प्यार करें लोगों से। मैं कहती हूँ मोहब्बत फातहे आलम, दिलों को जीते प्यार के साथ, चिढ़ ना करें। आप सोचिए इन्होंने चखी नहीं है, बस आप देखें ना आपको कोई चीज पसंद है, कोई भी नई चीज है, कोई आपने तो खाई है किसी ने नहीं खाई, आप कहते खाओ, अगला कहते हैं मैं नहीं खाती, ये इतना बुरा फ्रूट है। थाई फ्रूट्स से बेसिकली सिंगापुर और मलेशिया के गिर ना, वहां बहुत ही अजीब सी शक्लों के फ्रूट्स है, तो वो लोग मेरे लिए ढूंढ ढूंढ के लाते थे वो ड्रैगन और वो एक दो और भी अजीबो गरीब शक्लों वाले, खूबसूरत बहुत होते हैं लेकिन हम नहीं खाते। तो उनमें से मुझे एक सिस्टर है वो एक लेके आए, उसका नाम पता नहीं क्या ब्रीन है क्या, वो देखने में मैंगो लगता है लेकिन एक बड़ा सा ऐसे से गोल फुटबॉल जैसे आप लगा लें तरबूज का ना, तो वो इतने बड़ा तरबूज होता है और उसको यूं काटे ना तो उसके अंदर आठ, यकीन करें आज भी मेरे पाउचिस बनी हुई है, जैसे आप कह लें कि हम कोई चीज पैक करते हैं ना तो इर्द गिर्द फोम लगा लेते हैं और वो आठ ऐसी ना पत्तियां बनी हुई है, फिर चम्मच लेकर तो वो उस पत्ती के अंदर से ऐसे करके ना यूं करके तो पूरे का पूरा लूप जैसे गूदा, आम का गूदा होता है ये, और वो बीच में जो वो चीज़ें वो सिर्फ इसलिए कि वो खराब ना हो गले ना, जैसे अल्लाह ने पैक करके दिया हुआ है, मुझे अभी नाम उसका भूल गया है। यानी उस फ्रूट के बारे में ये मशहूर है कि जो नहीं खाता वो इसको नहीं खा सकता, क्यों, तो उसकी स्मेल थोड़ी तेज होती है, कि इवन उनकी ट्रेनों में खाने की इजाज़त नहीं है कि स्मेल कुछ लोगों को बुरी लगती है, बट एक दफ़ा उसका ज़ुबान पे टेस्ट रख लेना तो टेस्ट इतना क्रेजी है उसका कि फिर जो खाता है छोड़ता नहीं है। तो वो सिस्टर्स जो मेरे लिए लाई तो मैं कैसे खाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं आप खा के देखिए प्लीज़ हम आपके लिए ले थोड़ा सा चखें, तो वो पहले इतनी कहानियां सुन चुके थे, ऐसे चम्मच की अगली सी नोक को लगा के ना मैंने सिर्फ नाक बंद करके तो इधर रखा, पर जो उसका टेस्ट है आम क्या मीठा होगा, इतना टेस्टी, कहती जो खाता है उसको क्रेविंग होने लगती है फिर इसकी। मैं कहा मुझे ना डाले, मैंने मुझे तो नहीं मिलना जाके ये वहां, तो मैं फिर आऊं, कहती है फिर इसीलिए आएंगी तो सही ना हमारे पास। तो ये कुरान ऐसा है, बस इसके लिए तड़प रखे, दुआ करें जी। आप
एक तो ये बात बड़ी वो अभी थोड़ी याद आती है कि एक साहब थे उन्होंने थोड़ा सा गुमान ही था तो उनकी सवा साल की तहज्जुद चली गई।
जब भी कोई गुनाह होता है ना तो उससे हमारी नेकियां जाती हैं, ये तो पक्की बात है कि मेरी छुट्टी हुई कोई वजह होगी, आज मैं लेट हुई कोई मेरी गुनाह होगा, मेरे गुनाह मुझसे नेकियां रोक लेते हैं जी। इधर से आप जी भाजी।
किसी लड़के से सुना है कि उसका दोस्त जो वो भी मुर्तद हुआ है और वो
मुर्तद मुर्तद ये तो आप लफ्जों में कह रहे हैं, अमली तौर पर तो इर्तदाद आपको दिख नहीं रहा, हमारा पर्दा मुर्तद हो गया, हमारी दाढ़ियां मुर्तद हो गई, हमारे हिजाब इर्तदाद का शिकार, जो दीन का रिचुअल आप छोड़ते जा रहे हैं आपका इर्तदाद है उससे, ये तो आना है आगे सूरत मायदा में आयत, आप तो डिक्लेरेशन ही रह गया है ना पीछे।
उसके क्वेश्चन बड़े हैं तो मैंने उसे ये कहा था कि आप अपने सारे क्वेश्चन लिख के दें, इनके जवाब आपको मैं
नहीं, जवाब उसको नहीं मिलने, वो खुद आए, सवाल जवाब सेशन से दीन नहीं आता,
बच्चों वाला है तो फिर वो सुनने के लिए बात किसी की सुनने के लिए,
बस यही तो बात है, दिल सख्त हो जाते हैं, सुने और अब इसको महसूस करें कि हम इन आयतों पे कहाँ खड़े हैं।
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.